आज है 20 नवंबर दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में दावा, कश्मीर में हालात सामान्य हुए।
पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी, देश और दुनिया में इसके लिए कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई।
अमित शाह के दावे पर क्या कहते हैं आम कश्मीरी?
अभी तक कुछ हालात पता नहीं चल, क्या ठीक है या नहीं ठीक है वो अमित शाह को पता है, वो हमको पता नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो कश्मीरी है।
महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जुगत जारी और दुनिया जहान में चर्चा बोलिविया के घटनाक्रम पर।
बोलिविया की हालत जो थी बहुत ही ज्यादा खराब इकोनॉमिकली। मोरालेस आए तो सबसे पहले इंडिजिनस लोगों को रिकग्निशन मिली, उनको मेनस्ट्रीम में लाया गया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो चुके हैं। गृहमंत्री ने कहा कि अब भारत प्रशासित कश्मीर के किसी भी थाने में धारा 144 नहीं लगी है और कुछ जगह रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इंटरनेट सेवा को लेकर गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन की सिफारिश के आधार पर ही इसे बहाल किया जाएगा। पिछले दिनों मेक्सिको से अमेरिका में प्रवेश की कोशिश करते समय पकड़े गए भारतीय युवक दिल्ली पहुंच गए हैं। बुधवार सुबह एक विमान 150 लोगों के साथ दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, जिनमें अधिकतर युवक पंजाब और हरियाणा के थे। इन्हीं में से एक युवक ने बीबीसी संवाददाता दलजीत अम्मी को बताया।
इतों फ्लाइट सी मेरी एल सल्वाडोर दी, मास्को, पेरिस, मेक्सिको।
यहाँ से मेरी अल सल्वाडोर की फ्लाइट थी, मॉस्को, पेरिस और मेक्सिको होते हुए अल सल्वाडोर जाना था, मगर एजेंट ने मेक्सिको में उतार लिया। उसके बाद मैंने बॉर्डर क्रॉस किया और इसके साथ ही बॉर्डर पेट्रोलिंग ने मुझे उठा दिया। बाद में हर कैंप में तकरीबन हर महीने मुझे बदला जाता रहा। वापस घर भी आना था, लेकिन घर वालों को क्या कहते कि आपके पैसे बर्बाद करके घर आ रहे हैं। ये थे मेक्सिको से अमरीका में प्रवेश की कोशिश करते समय पकड़े गए एक भारतीय युवक के शब्द। हांगकांग में ब्रिटेन के वाणिज्य दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी ने कहा है कि जब अगस्त में वो चीन गए थे तो उन्हें हिरासत में लेकर यातनाएं दी गई थीं। साइमन चेंग ने बीबीसी को बताया कि उन्हें हथकड़ियां लगाई गईं, आंखों पर पट्टी बांधी गई और शारीरिक कष्ट वाली स्थिति में रखा गया। चेंग ने कहा कि उन पर हांगकांग में अशांति फैलाने का आरोप लगाया गया था। अमरीकी सीनेट ने एक बिल पारित किया है जिसमें कहा गया है कि अगर हांगकांग में लोकतंत्र बहाल नहीं रह पाता तो इससे स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस वापस ले लिया जाएगा। इस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर इस विधेयक पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किए तो वो बदले में कड़े कदम उठाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि चीन किसी से नहीं डरेगा। अमेरिका का ये कदम गलत है, इससे न सिर्फ चीन के हितों को नुकसान पहुंचेगा बल्कि हांगकांग में अमेरिका के हित भी प्रभावित होंगे। चीन के आंतरिक मामलों में अमेरिका के दखल का प्रयास या हमारे विकास को रोकने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी, ये प्रयास विफल साबित होंगे। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षा को अपने भाई महिंदा राजपक्षा को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल गया है। महिंदा राजपक्षा ने भीषण गृहयुद्ध के दौरान श्रीलंका का नेतृत्व किया था। जब वो राष्ट्रपति थे तब उनके भाई गोटाभाया रक्षा मंत्री थे। उनके ऊपर तमिल विद्रोहियों को कुचलने के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे थे जिन्हें वो निराधार बताते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वी बेनी गंट्स सरकार बनाने के लिए एक अहम दल का समर्थन जुटाने में असफल रहे हैं। इसराइल बेटनू पार्टी के अविगडोर लाइबरमैन ने दोनों का ही समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इस कारण अब 12 महीनों के अंदर देश में तीसरी बार आम चुनाव होने की संभावना बनती दिख रही है। बांग्लादेश में बस और ट्रक ऑपरेटर पूरे देश के बांग्लादेश में बस और ट्रक ऑपरेटर पूरे देश में यातायात को ठप करने वाली हड़ताल में शामिल हो गए हैं। ये हड़ताल नए ट्रैफिक नियमों के विरोध में हो रही है जिसके तहत सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हादसे में दो छात्रों की मौत के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे जिसके बाद सरकार ने ट्रैफिक नियम सख्त कर दिए हैं। हड़ताल के चलते राजधानी ढाका में भी बसों को रोक दिया गया जिसके कारण कई लोग फंसे रह गए। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी, संदीप सोनी के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में दावा किया कि भारत प्रशासित कश्मीर घाटी में 5 अगस्त के बाद यानी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब सब कुछ सामान्य है।
पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है। देश और दुनिया में इसके लिए कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, 5 अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति की पुलिस फायरिंग से मौत नहीं होगी। पत्थरबाजी की घटना में गत साल की कंपैरिजन में कमी आई है। सभी 20,411 स्कूल खुले हैं, परीक्षा सुचारू रूप से ली जा रही है। घाटी के सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG और चावल कहीं कोई कमी नहीं। गत साल की कंपैरिजन में मैं कर रहा हूँ। सेब का जहां तक सवाल है, अब तक काफी सारी मात्रा में सेब बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने पूछा कब तक स्थिति सामान्य हो, तो सामान्य सिर्फ एजुकेशन में नहीं होती है गुलाम नबी साहब, हमारे दिमाग में है, वो ही लेकर चलेंगे तो ठीक नहीं होगा। साहब, मैं गुलाम नबी साहब को कहना चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बोलता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर घाटी में बंद इंटरनेट सेवाओं को भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। गृह मंत्री के राज्यसभा में दिए इस बयान पर आम कश्मीरी नागरिकों की राय जानने के लिए श्रीनगर में हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर ने कुछ आम लोगों से बात की, सुनिए क्या कहना है उनका।
दवा सही नहीं है अभी, लेकिन अभी दुकान खुले हैं लेकिन पूरी काम नहीं चल रही है। न स्कूल खुले हैं, जो तलबा है वो घर पर ही बैठे हुए हैं, न पढ़ाई है न कुछ है। मेरे भी बच्चे हैं वो अभी घर में ही पड़े हैं, मैं भी खुद परेशान हूँ अपने बच्चों के बारे में, उनका फ्यूचर कहाँ होगा, किधर होगा। मैं कॉलेज में ही काम करता हूँ, उधर भी तलबा बहुत दर उधर है, कुछ नहीं हासिल हुआ है उनको। कहते हैं कि हमें स्टडी लिटरेचर चाहिए, वो भी मौजूद नहीं है उनको वहाँ। वो सिर्फ कॉलेज आते हैं लेकिन क्लास वलास कुछ नहीं है। थोड़े नॉर्मल है लेकिन पूरे नॉर्मल नहीं है। ये लाल चौक है लेकिन इधर तो थोड़े दुकान खुले हैं, लेकिन उधर बाकी जो डाउन टाउन है उधर सोरा है, बसपोरा है, उधर तो सुबह खुलते हैं लेकिन शाम को नहीं खुलते हैं। सुबह 10 बजे तक खुले होते हैं, 10 बजे के बाद कुछ नहीं खुला होता है।
जो हालात है अभी नॉर्मल नहीं है, लेकिन हालात नॉर्मल हो या ख़राब हो, यहाँ पे जो कश्मीरी है वो जो आर्टिकल 370 है जो उसको एब्रोगेट किया है वो उसके हक में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमत थी और कैटेगरीज़ खासकर कैटेगरीज़ SC ST, यहाँ पे अब बाहर के लोग भी फार्म भर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम ही है। जो इंटरनेट का मामला है, यहाँ पे बहुत लोग बेरोज़गार हो गए हैं इससे, इंटरनेट से। यहाँ पे इंटरनेट अभी बंद ही है तकरीबन 6 महीने से।
हो रहा है, नॉर्मल हो रहे हैं, अभी तक प्रीपेड बंद है और नेट भी बंद है, सारा कुछ बंद है इस वक्त। अभी तक कुछ हालात पता नहीं चाहिए क्या ठीक है या नहीं ठीक है, वो अमित शाह को पता है, वो हमको पता नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो कश्मीरी है। अमित शाह को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हम कौन सा, हम तो कश्मीरी है यहाँ, हम तो भूखे प्यासे मरे हैं यहाँ।
ये थी श्रीनगर से कुछ आम लोगों की आवाज़ें। गृह मंत्री अमित शाह के बाकी दावों की सच्चाई जानने के लिए मैंने श्रीनगर में BBC संवाददाता रियाज मसरूर से बात की और सबसे पहले ताज़ा सूरत हाल जानना चाहा।
मैं लाल चौक में हूँ इस वक्त, जो कि केंद्रीय बाजार है। जब ये स्पीच हो रही थी पार्लियामेंट में, उसके 1 घंटे बाद यहाँ लाल चौक अचानक से बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो वॉलंटरी स्ट्राइक थी 5 अगस्त से, वो दिन के 11:30-11 बजे तक दुकानें होती थी, उसके बाद हड़ताल हो जाती थी। लेकिन जब से बर्फबारी हुई तब से यहाँ रफ्ता सामान्यता की ओर बढ़ रही थी स्थिति, और लोग अब दुकानें खोल रहे थे। आज जब ये दावा किया गया कि सब कुछ सामान्य है, तो अचानक से लाल चौक और लाल चौक के इर्द गिर्द के इलाके और जो पुराना शहर है डाउनटाउन, वहाँ के कुछ इलाकों में दुकानें अचानक से बंद हो गई और कुछ जगहों पर लड़कों ने दुकानों पर पत्थर फेंके।
रियाज, ये बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्टोन पेल्टिंग, पथराव की घटनाओं में कमी आने की बात कही है, पिछले 1 साल में आपने क्या महसूस किया है, क्या वाकई कमी आई है?
जी बिल्कुल, ये बात अपने आप में दुरुस्त भी है, क्योंकि पथराव के जितने इंसिडेंट्स होते थे ऐसी स्थिति में, अब वैसे नहीं होते हैं। और उसका एक कारण यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई और सरकार ने खुद भी माना, कोई 6,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया था 5 अगस्त के बाद, जिनमें से 5,000 को छोड़ दिया गया है। पथराव के इंसिडेंट सिर्फ एक बार हुए थे जब यहाँ यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल आया था, उस दिन एक ही दिन में 60 ऐसी घटनाएं घटी थी पूरी वैली में।
अच्छा रियाज, ये भी बताइए कि गृह मंत्री का दावा है कि 5 अगस्त के बाद से कश्मीर घाटी में पुलिस की गोली से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, इस दावे में कितनी सच्चाई है?
ये बिल्कुल सही दावा है क्योंकि गोली से कोई मरा नहीं है। एक लड़का जो पहले ही दिन यानी 6 अगस्त को मरा था, वो पुलिस ने विरोध करने वालों को प्रदर्शनकारियों को चेज किया, तो उन्होंने 5-6 लड़कों ने दरिया में छलांग मार ली और एक उसमें डूब गया। और दूसरी डेथ जो सोवरा इलाके में हुई थी, असरार खान लड़के का नाम है, उनको शेल लगा था, टेयर गैस शेल। और भी एक बुजुर्ग यहाँ मारे गए, वो धुआं जो टेयर गैस का होता है उसे दम घुटने से मरे। टेक्निकली ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है कि गोली से कोई मरा नहीं है, लेकिन जो भी 4 या 5 जो डेथ्स हुई हैं वो डिफरेंट रीजंस की वजह से हुई हैं, लेकिन इसी परिस्थिति में हुई हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सारे एप्पल्स निकाले जा रहे हैं, इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को भी उन्होंने बहुत बेहतरीन बताया है पिछले साल के मुकाबले।
जाहिर है ये तो आंकड़े सरकारी होते हैं और सरकारी आंकड़ों को जब जमीन पे जो स्थिति है उसके साथ मिलाया जाए तो कुछ अलग तस्वीर उभरती है। जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनके बारे में ये था कि उन्होंने 27 तारीख तक कोई पिकिंग नहीं की, यानी उन्होंने मेवा उतारा ही नहीं 27 सितंबर तक। उसके बाद सरकार ने कहा कि नैफेड के तहत उनका मेवा खरीदा जाएगा, लेकिन वो अनअट्रैक्टिव ऑफर था, यानी पहले तो 51 रुपए फी किलो और उसके बाद 64 कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो किसान थे उनका कहना था कि मूल्य जो है वो उचित नहीं है, तो उससे वो डिबैकल हो गया उस पॉलिसी को। हालांकि बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी क्योंकि डोर स्टेप मार्केटिंग जो किसान को ऐसी परिस्थिति में मिल रही थी, तो इसलिए 20,000 से ज्यादा बॉक्सेस जो है वो यहाँ से नहीं जा पाए, प्राइवेट ही लोगों ने भेजे और उनको काफी ज्यादा सिक्योरिटी को लेकर भी उनको ज्यादा परेशानियां हुई क्योंकि संदिग्ध बंदूकधारियों ने कई लोगों को मार गिराया जिनमें कुछ एप्पल ग्रोवर्स भी थे या ट्रक ड्राइवर्स भी थे। अब इस सारी स्थिति को जब आप मिलाते हैं, इन सारी कड़ियों को मिलाते हैं, तो आप इसको शत प्रतिशत सामान्य नहीं कह सकते हैं, कुछ न कुछ असामान्यता तो है। इसलिए इस स्थिति को आप किस संदर्भ में सामान्य बताते हैं, इस पे कॉन्फ्लिक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ कश्मीर में रह रहे लोगों के बीच।
श्रीनगर से जानकारी दे रहे थे BBC संवाददाता रियाज मसरूर।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
महाराष्ट्र में सरकार और मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत माथापच्ची हो रही है। बैठकों मुलाकातों का सिलसिला हर दिन जारी है। तापमान के हिसाब से दिल्ली यूं तो धीरे धीरे सर्द हो रही है, लेकिन सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच दिल्ली में आज एक बैठक हुई जिसे काफ़ी अहम बताया जा रहा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले BBC मराठी सेवा के हमारे सहयोगी अभिजीत कामले से बात की जो इस समय शरद पवार के आवास पर मौजूद हैं।
दिल्ली में शरद पवार का जो निवास स्थान है 6 जनपद, वहां पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के NCP के जो नेता हैं उनकी बैठक शुरू है। इस बैठक से पहले कांग्रेस के जो नेता थे वो सोनिया गांधी से मिले हैं, उनसे चर्चा करने के बाद ये सब लोग यहाँ पर आए। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे है जो महाराष्ट्र के इंचार्ज है, उसके सिवा कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है बालासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चौहान, ये सब नेता इसमें शामिल हुए हैं इस बैठक में और शरद पवार खुद इस बैठक में हैं। इस बैठक में जो चर्चा हो रही है और जिस तरीके से नेता आए हैं उसे ये माना जा रहा है कि अब कांग्रेस, NCP और शिवसेना सरकार स्थापना की ओर एक कदम बढ़ाते हुए दिख रही है। पिछले कई दिनों से इनमें चर्चा हो रही है और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ये साथ में आएंगे नहीं आएंगे। कांग्रेस को इसमें एक द्विधा मनस्थिति थी उनकी कि शिवसेना के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें जो बात कांग्रेस नेताओं ने बताई है उनका कहना है कि अब सोनिया गांधी भी इसके लिए राजी हुई है कि हम शिवसेना के साथ जाएं और महाराष्ट्र में ये सरकार बनाए।
अभिजीत, क्या ये उम्मीद की जाए कि कुछ घंटों में या अगले 1-2 दिन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होंगे और सरकार की शक्ल क्या होगी ये तय हो जाएगा?
जी, ये अगले कुछ घंटे में होने की तो गुंजाइश नहीं दिख रही, क्योंकि अभी जो बैठक शुरू है इसमें सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी शामिल है। इसमें इन पार्टियों का डिसीजन सामने आएगा कि वो लोग क्या उसमें स्टैंड ले रहे हैं, अगर इस बैठक में वो कुछ नतीजे पर पहुंच पाते हैं। इसके बाद इनकी शिवसेना के साथ बैठक होगी और उसके बाद सत्ता का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से वो स्टेट की जो कैबिनेट है उसमें किस तरीके के मंत्री होंगे, कौन होंगे या कौन से डिपार्टमेंट किसको मिलेंगे और चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, ये शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी जब बैठेंगे तब तय हो पाएगा।
महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जुगत जारी, जानकारी दे रहे थे बीबीसी मराठी सेवा के हमारे सहयोगी अभिजीत कांबले। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ादी की लड़ाई का प्रमुख केंद्र कहे जाने वाले तत्कालीन इलाहाबाद के आनंद भवन और उससे जुड़े कुछ भवनों को प्रयागराज नगर निगम ने लगभग 4 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का गृह कर बकाया का नोटिस भेजा है। कांग्रेस पार्टी के कुछ पार्षद और नेताओं ने नगर निगम की इस कार्रवाई की आलोचना की है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित आनंद भवन मोतीलाल नेहरू का मकान था, लेकिन 1920 के दशक से ही आज़ादी की लड़ाई के प्रमुख केंद्र के रूप में ये जाना जाता रहा और साल 1930 में मोतीलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कुछ समय तक यह कांग्रेस पार्टी का दफ्तर रहा और उसके बाद इसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। उससे जुड़े स्वराज भवन को भी बाद में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि नामक ट्रस्ट आनंद भवन, संग्रहालय और तारामंडल का संचालन करता है। प्रयागराज नगर निगम ने इन सभी भवनों को मिलाकर करीब 4.5 करोड़ रुपए के गृहकर यानी हाउस टैक्स का नोटिस भेजा है। नगर निगम के कर संग्रह अधिकारी पीके मिश्र कहते हैं,
2003 से गृहकर बकाया है, हर साल बिल भेजा जाता है और इनके द्वारा जो है पार्ट पेमेंट गृहकर का कुछ किया जाता है। 2003 से जो है फुल पेमेंट नहीं हुआ है, वही बकाया है और प्रत्येक वर्ष बिल भेजा जाता है, उसी प्रक्रिया में इनको नोटिस प्रेषित की गई है। 4 करोड़ से ऊपर लगभग हो गया टोटल अमाउंट।
नगर निगम से नोटिस मिलने के बाद स्मारक निधि के नई दिल्ली स्थित दफ्तर से मेयर के नाम चिट्ठी आई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि इस टैक्स का पुनर्मूल्यांकन कराकर बढ़ा हुआ गृहकर माफ किया जाए। हालांकि इस बारे में आनंद भवन में काम करने वाले कोई भी कर्मचारी और अधिकारी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। यहाँ के मुख्य केयर टेकर डॉक्टर रवि किरण कहते हैं कि ये मामला अदालत में विचाराधीन है। नगर निगम ने इतना ज्यादा टैक्स इसलिए लेने का फैसला किया है क्योंकि निगम के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं, यानी संग्रहालय और तारामंडल में प्रवेश के लिए टिकट लिया जाता है। प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी कहती हैं कि यदि ट्रस्ट से संबंधित कागजात दिखा दिए जाएं तो टैक्स माफ कर दिया जाएगा।
हम भी मानते हैं कि इतनी बड़ी धरोहर हमारे शहर में है, लेकिन हमें उसके लिए जो लोग देख ट्रस्ट में हैं लोग उनके, वो हमें कम से कम कागज तो मुहैया करा दे, वो आज मुहैया करा दे, हम कल जांच करा के खत्म करा दे।
जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि एक चैरिटेबल यानी धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है। इस मामले पर नगर निगम की बैठक में काफी हंगामा भी हुआ। कुछ पार्षदों और कांग्रेस नेताओं को इस बात पर आपत्ति है कि एक राष्ट्रीय धरोहर पर सरकार टैक्स लगा रही है। कांग्रेस नेता अभय अवस्थी कहते हैं,
अरे आजादी की लड़ाई का ये जो है मंदिर है जिसको कि नेहरू खानदान ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, माने अब ये प्रॉपर्टी भारत माँ की है। प्रधानमंत्री जी माँ के बड़े जो है उपासक है और भारत माँ को समर्पित संपत्ति से टैक्स वसूलना चाहते, वहाँ पर कौन सी जो है कमर्शियल एक्टिविटी है? सरकार को ये मानक तय करना पड़ेगा कि नेशनल हेरिटेज ट्रस्ट और कमर्शियल एक्टिविटीज के सेंटर, इन तीनों को परिभाषित करना पड़ेगा।
दरअसल आनंद भवन, संग्रहालय और तारामंडल का गृहकर पहले मात्र 600 रुपए था और साल 2000 तक यही धनराशि जमा की जाती रही। जब टैक्स बढ़ाया गया तो उसके पुनरीक्षण के लिए अदालत की शरण ली गई। इस बीच नगर निगम टैक्स भेजता रहा और ट्रस्ट की ओर से सिर्फ 600 रुपए जमा किए जाते रहे। यही बकाया राशि अब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की दलील है कि इस पूरे परिसर में पिछले 4 दशक से कोई नया निर्माण नहीं किया गया, बावजूद इसके हाउस टैक्स कई गुना बढ़ा दिया गया। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
करीब 1 महीने पहले बोलिविया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारी इवो मोरालेस के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जो 14 साल से राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज थे। बढ़ते प्रदर्शनों को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया और देश छोड़कर मेक्सिको चले गए, लेकिन इसके बाद बोलीविया में घटनाक्रम तेजी से बदला और संघर्ष में कम से कम 9 लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया जहान में आज मानसी दास बोलीविया के घटनाक्रम की पड़ताल कर रही हैं।
दुनिया जहान 25 अक्टूबर 2019 लैटिन अमरीकी देश बोलीविया में 5 दिन पहले यानी 20 अक्टूबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए। इनमें राष्ट्रपति इवो मोरालेस को अपने प्रतिद्वंदी कार्लोस मेसी से 10% अधिक वोट मिले थे, लेकिन जीत की घोषणा के चंद पलों बाद सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए। दक्षिण अमेरिका का 5वां बड़ा देश बोलीविया बीते करीब 1 महीने से लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण चर्चा में है। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला ये देश पूर्व में पेरू और चिली, पश्चिम में ब्राजील और दक्षिण में अर्जेंटीना और पराग्वे से घिरा है। 1825 के बाद से यहाँ अधिकतर समय सैन्य सत्ता रही और अधिकतर राष्ट्रपतियों का तख्ता पलट हुआ। 19वीं सदी के आखिर में स्थितियां थोड़ी बदली और मतदान के जरिए राष्ट्रपति चुने जाने लगे, हालांकि देश का नेतृत्व अधिकांश वक्त सैन्य अधिकारियों के हाथ में रहा। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज के रिटायर्ड प्रोफेसर अब्दुल नाफी बताते हैं,
बोलीविया एक बदकिस्मत देश है। जब ये आजाद हुआ जो स्पेन के गोरे लोग थे वो हारे, जो लैटिन बोलीविया में पैदा हुए गोरे थे सत्ता उन्होंने संभाल ली अपने हाथ। ये एक अजीब आजादी, अजीब स्वतंत्रता मिली थी बोलीविया को, जिसमें इंडिजिनस आबादी का कोई किसी भी तरह से कोई रोल, कोई योगदान, कोई भूमिका थी नहीं कहीं दूर दूर भी। उनकी जमीनें हड़प कर लेना, उनकी भाषाओं को खत्म करना, फोर्स्ड असिमिलेशन, ये तो फिर भी किसी तरह से बच गए, क्योंकि इतनी ज्यादा जनसंख्या थी कि उसको खत्म नहीं कर पाए।
साल 2012 में हुई जनगणना के अनुसार बोलीविया में 41% लोग मूल निवासी हैं और यहाँ करीब 36 समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इतने विशाल समुदाय को देश की सत्ता में जगह 2006 के बाद ही मिली। बोलीविया की अर्थव्यवस्था टिन, चांदी, जस्ता, सोना, स्मार्टफोन की बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले लिथियम और नेचुरल गैस पर निर्भर है। साथ ही अर्थव्यवस्था में कोको की खेती का अहम योगदान है। कोको से कोकेन नाम का नशीला पदार्थ बनता है और इसकी पत्तियां चाय की तरह उबालकर भी पी जाती हैं। 1980 के बाद से अमेरिका ने बोलीविया में कोका की खेती खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी थी। अमेरिका का कहना था कि नशीले पदार्थों की सप्लाई में बोलीविया की भूमिका अहम है। इसका विरोध किया आयमारा समुदाय के इवो मोरालेस ने। किसानों के परिवार में जन्मे मोरालेस ने कोचाबाम्बा में कोको किसानों का यूनियन बनाया। 2002 में मोरालेस राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए, लेकिन जीत उन्हें नहीं मिली। 2006 में आखिरकार वो राष्ट्रपति बने। वो देश के इतिहास के पहले मूल निवासी हैं जो इस गद्दी तक पहुंचे।
De lo contrario, se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente.
वो बोलीविया की काफी लोकप्रिय नेता रहे और लगातार चुनाव जीतते रहे। वो कुल 13 साल 9 महीनों तक बोलीविया के राष्ट्रपति रहे। गरीबी से लड़ने और अर्थव्यवस्था में सुधार की उनकी नीतियों की काफी प्रशंसा भी हुई। गोवा यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपराजिता गंगोपाध्याय बताती हैं,
बोलीविया की हालत जो थी बहुत ही ज्यादा खराब थी इकोनॉमिकली। मोरालेस आए तो सबसे पहले इंडिजिनस लोगों को रिकग्निशन मिली, उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया, और उसके अलावा जो इकोनॉमिकली उन्होंने किया, उन्होंने सारे जितने इंडस्ट्रीज थे उनको नेशनलाइज किया। मोरालेस के पहले जो पीने का पानी था उससे लेके हर कुछ प्राइवेटाइज था।
लेकिन मामला तब बिगड़ा जब मोरालेस ने चौथी बार चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसकी देश का संविधान इजाजत नहीं देता। राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें जीत तो मिली, लेकिन उन पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। इस दौरान मतगणना के 24 घंटों ने इवो मोरालेस का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मतों की गिनती बीच में ही अचानक रोक दी गई और उसके ठीक 24 घंटों बाद मतगणना के नतीजे पेश किए गए। जहां पहले इवो मोरालेस अपने प्रतिद्वंदी से पिछड़ते दिख रहे थे, वहीं 24 घंटे के बाद इवो मोरालेस को विजयी घोषित कर दिया गया। प्रोफेसर अब्दुल नाफी कहते हैं,
असल में 2 बातें थी इसमें। एक तो ये था मोरालेस से खुद गलती हुई है। 2016 में एक रेफरेंडम हुआ था और एक आम राय देश के अंदर ये थी कि उनको चौथी बार इलेक्शन की इजाजत नहीं है संविधान के अंतर्गत। आपने फिर चौथी बार इलेक्शन लड़ लिया। और दूसरा क्या, वो जो 24 घंटे वोट की जो गिनती थी वो रुक गई। اس سے لوگوں کے دل میں اور شک پیدا ہوا. آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹ سے ان کا بھی بیان آ گیا کہ ہاں اس میں گڑبڑی ہوئی ہے کاؤنٹنگ کے دوران. اب اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے جو ان کے اپنے سمرتھک بھی تھے وہ بھی ناراض ہوگا کہ آپ الیکشن لڑ رہا ہو اور جب الیکشن لڑ بھی رہا ہو تو اس کے بعد ہیرا پھیری کی ہے اس کے اندر.
آخر 10 نومبر کو سینا پرمکھ جنرل ولیمز کلیمن نے ہستکشیپ کیا اور مورالیس سے راشٹرپتی کے پد سے استعفی دینے کے لیے کہا.
Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del estado.
دیش کے بھیتر کی استھتی کو دیکھتے ہوئے ہم راشٹرپتی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پد تیاگ دیں اور شانتی بنائے رکھنے میں مدد کریں. بولیویا کے استھائیتو کے لیے یہی بہتر ہوگا.
پروفیسر اپراجیتا گنگوپادھیائے کہتی ہیں کہ بولیویا میں جو ہو رہا ہے اسے لیتھیم کی بھومکا کے مد نظر بھی دیکھا جانا ضروری ہے. بولیویا نے 2019 میں لیتھیم کے کھدانوں کے لیے چین کے ساتھ قرار کیا تھا. سینا اس کے ویروتھ میں تھی.
بولیویا میں لیتھیم کے ڈپازٹس بہت زیادہ ہیں. فیکٹ ساؤتھ امریکہ میں 3 کنٹریز کو ارجنٹینا بولیویا اور چلے کو لیتھیم ٹرائنگل کہا جاتا ہے. اس میں کچھ ایک ملٹری کا اپوزیشن رہا ہے اور ملٹری جو ہے وہ ٹریڈیشنلی بڑی کنزرویٹو ہوتی ہے اور رائٹ ونگ ہوتی ہے. بڑے سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس کا رول ہے لیتھیم مائنز میں پوری طرح کنٹرول اگر چائنیز کا رہا تو یہ امریکہ کے لیے ایک دقت ہوگا.
مورالیس نے راشٹرپتی کے پد سے استعفی دے دیا اور آروپ لگایا کہ دکشن پنتھیوں نے ان کا تختہ پلٹ کیا ہے. اس کے بعد مورالیس دیش چھوڑ کر شرن لینے کے لیے میکسیکو پہنچے. 12 نومبر کو مورالیس نے دعویٰ کیا کہ اگر بھیڑ نے ان کے گھر میں لوٹ پاٹ کی ہے اور اسے جلا دیا ہے. 12 نومبر کو ڈپٹی اسپیکر جینینے اینیاس نے خود کو دیش کا انترم راشٹرپتی گھوشت کر دیا. جینینے 2006 میں سمویدھان سبھا کے لیے چنی گئی تھی اور مورالیس کی کٹر ویروتھی رہی ہیں. پروفیسر اپراجیتا بتاتی ہیں کہ جینینے کو ان کے دکشن پنتھی جھکاو اور مول نواسیوں کے خلاف بولنے کے لیے جانا جاتا ہے. سال 2013 میں جینینے اپنے ایک ٹویٹ کے کارن چرچا میں آئی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا، میں بولیویا کو شیطانی آدیواسی رواجوں سے آزاد دیکھنا چاہتی ہوں، یہ شہر آدیواسیوں کے لیے نہیں ہے، انہیں چاکو میں ہی رہنا چاہیے. ایوو مورالیس کے دیش چھوڑ کر جانے کے بعد جینینے نے کہا کہ مورالیس اگر دیش واپس آئے تو چناؤ میں دھاندلی کرنے اور ان کی سرکار پر لگے بھرشٹاچار کے آروپ کے کارن انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. بولیویا کی سڑکوں پر رویوار اور سوموار کو ایوو مورالیس کے سمرتھک اور مول نواسی اترے. انہوں نے کئی شہروں میں پوری طرح چکا جام کر دیا. پروفیسر عبد النافع کہتے ہیں کہ مول نواسیوں کو لمبے عرصے تک مکھیا دھارا سے باہر رکھا گیا تھا اور ان کی اندیکھی کرنا اب اتنا آسان نہیں رہے گا.
بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں انڈیجنس کا کی بہومت کافی زیادہ ہے اور وہ گڑھ ہے ان کا، جیسے کوچا بمبا وغیرہ کے علاقے ہیں، وہاں کافی مجھے لگتا ہے یہ مار دھاڑ چلے گی.
بولیویا میں فی الحال سنگھرش پہچان کا ہے، مول نواسیوں کی پہچان کا جو جن سنکھیا کا 41% ہے. آگے سرکار کس کی بنے گی اور اس کا جھکاو کس طرف رہے گا یہ کہنا ابھی مشکل ہے، لیکن امید پھر بھی باقی ہے.
دلی اسٹوڈیو کی گھڑی میں کچھ ہی دیر میں بجیں گے رات کے 8، وقت ہو چلا ہے کاریکرم کے سماپن کا. چلتے چلتے خاص خاص خبریں پنہ آدرش راٹھوڑ سے.
بی بی سی سماچار. بھارت کے گرہ منتری امت شاہ نے بدھوار کو راجیہ سبھا میں دعویٰ کیا کہ کیندر شاست پردیش جموں کشمیر میں حالات سامان ہو چکے ہیں. پچھلے دنوں میکسیکو سے امریکہ میں پرویش کی کوشش کرتے سمے پکڑے گئے بھارتی یوک دلی پہنچ گئے ہیں. ہانگ کانگ میں برٹین کے وانجیہ دوتاواس کے ایک پورو کرمچاری نے کہا ہے کہ جب وہ اگست میں چین گئے تھے تو انہیں حراست میں لے کر یاتنائیں دی گئی تھیں. امریکی سینیٹ نے ایک بل پارت کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ہانگ کانگ میں لوکتنتر بحال نہیں رہ پاتا ہے تو اس سے اسپیشل ٹریڈنگ اسٹیٹس واپس لے لیا جائے گا. شری لنکا میں ہوئے راشٹرپتی چناؤ میں ہار کے بعد پردھان منتری رانیل وکرم سنگھے نے پد سے استعفی دے دیا ہے. اس کے بعد نو نرواچت راشٹرپتی گوٹا بھایا راجپکشا کو اپنے بھائی مہندا راجپکشا کو پردھان منتری بنانے کا موقع مل گیا ہے. اسرائیل کے پردھان منتری بنیامین نیتنیاہو اور ان کے پرتدوندی بینی گنٹس سرکار بنانے کے لیے ایک اہم دل کا سمرتھن جٹانے میں اسفل رہے ہیں. اس کے کارن اب 12 مہینوں میں تیسری بار دیش میں عام چناؤ ہونے کی سمبھاونا بنتی دکھ رہی ہے. بی بی سی سماچار.
دن بھر میں آج اتنا ہی. کاریکرم کا تکنیکی پکش سنبھال رہے تھے راجیش چوہان. اگلا پرسارن نمسکار بھارت. سمے جانتے ہیں آپ भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए BBCHindi.com हमेशा आपके साथ है। शुभ रात्रि।